चौथा अध्याय वैदिक साहित्य की रचना का काल। पहला, रचना काल के निर्धारण में कठिनाइयां। पिछले दो अध्यायों में वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों और वेदांगों का जो परिचय दिया गया है, उसमें कहीं भी उनके निर्माण काल का उल्लेख नहीं किया गया। इसका कारण यह है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के तिथि क्रम का विषय बहुत ही विवादग्रस्त है। ऐतिहासिकों में इस पर बहुत मतभेद है। प्राचीन भारतीय इतिहास की जो अनुश्रुति महाभारत तथा पुराणों में संकलित है, उससे राजवंशों और राजाओं के पौर्वापर्य का अवश्य बोध हो जाता है, पर वे किस समय में हुए थे यह स्पष्ट नहीं होता। प्राचीन साहित्य में अनेक संवतों का उल्लेख है, पर कठिनाई यह है कि भारतीय तिथि क्रम में इन संवतों का क्या स्थान है, यह भी निर्विवाद नहीं है। वर्तमान समय में प्राचीन भारतीय इतिहास के तिथि क्रम का निर्धारण इन दो बातों के आधार पर किया गया है। पहला, ग्रीक लेखकों के विवरणों के अनुसार सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो पाटलिपुत्र का राजा नंददरमस या नंद था, उसे मारकर सेंद्राकोटस चंद्रगुप्त ने राज प्राप्त किया। ग्रीक इतिहास में सिकंदर का समय निश्चित है। उसने 4वीं सदी ईस्वी भी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, अतः मगध राज नंद और मौर्य वंश के प्रवर्तक चंद्रगुप्त का समय भी 4वीं सदी ईस्वी पूर्व में होना चाहिए। दूसरा, बौद्ध साहित्य द्वारा बुद्ध का और जैन साहित्य द्वारा महावीर का काल निर्धारित कर सकना संभव है। ये दोनों 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में हुए थे। बौद्ध और जैन साहित्य में बुद्ध और महावीर के समकालीन मगध के राजाओं बिंबिसार और आजाद शत्रु का भी उल्लेख है, अतः इन राजाओं का समय भी 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में ही होगा। इन दो बातों को दृष्टि में रखकर आधुनिक ऐतिहासिकों ने नंद और चंद्रगुप्त मौर्य का समय 4वीं सदी ईस्वी पूर्व में मान लिया और मगध राज बिंबिसार तथा आजाद शत्रु का समय 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में। पौराणिक अनुश्रुति में जिन राजाओं का वृतांत बिंबिसार से पूर्ववर्ती राजाओं के रूप में दिया गया है, उन्हें उससे पहले रखकर उनका समय भी निश्चित कर दिया गया। पुराणों में जन्मेजय के प्रपुत्र अधिसीम कृष्ण और नंद के बीच राज्य करने वाले राजाओं के जो नाम दिए गए हैं, उनकी संख्या 26 है। यदि इन 26 राजाओं में से प्रत्येक का औसतन शासनकाल 20 वर्ष मान लिया जाए तो इन सब राजाओं ने कुल मिलाकर 520 साल तक राज्य किया। इस प्रकार अधिसीम कृष्ण का समय नंद से 520 साल पूर्व था और महाभारत युद्ध का उससे लगभग 100 वर्ष पूर्व, क्योंकि नंद सिकंदर का समकालीन था। अतः महाभारत युद्ध का समय उससे 620 वर्ष पूर्व या 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग रखा जाना चाहिए। वर्तमान समय में भारत के प्राचीन इतिहास पर जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं, प्रायः उन सब में चंद्रगुप्त मौर्य और नंद के समय को 4वीं सदी पूर्व में तथा बुद्ध और महावीर के समय को 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में मानते हुए भारत के विविध राजवंशों एवं राजाओं का काल निर्धारित किया जाता है, और इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए महाभारत युद्ध तथा परीक्षित आदि का काल 1000 या 1200 ईसा पूर्व के लगभग मान लिया जाता है। अब यदि महाभारत युद्ध का समय 1200 ईसा पूर्व के लगभग हो तो अनेक ब्राह्मण ग्रंथों को भी प्रायः उसी समय का मानना होगा, क्योंकि उनमें जन्मेजय सदृश अनेक ऐसे राजाओं का उल्लेख है जिनका संबंध महाभारत के साथ है। कतिपय वेद मंत्रों में भी ऐसे राजाओं के नाम आए हैं जो महाभारत युद्ध के समय या उससे कुछ पहले हुए थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक सूक्त है जिसमें संतनु और उसके पुरोहित देवापि का उल्लेख है। शंतनु कौरवों का पितामह तथा भीष्म का पिता था। यदि ऋग्वेद में आए शंतनु से कौरव वंश का राजा शांतनु की अभिप्रेत हो तो ऋग्वेद के इस सूक्त को भी 1200 ईस्वी पूर्व के लगभग में बना स्वीकार करना होगा। पर मुख्य प्रश्न यह है कि क्या महाभारत युद्ध का 1000 या 1200 ईस्वी पूर्व मानना उपयुक्त है। भारत के ज्योतिष संबंधी ग्रंथों के अनुसार महाभारत युद्ध का समय 3102 ईस्वी पूर्व है, अर्थात 3102 ईस्वी पूर्व है। महाभारत में भी अनेक स्थलों पर यह उल्लेख है कि द्वापर युग का अंत होकर जब कलियुग का प्रारंभ हुआ तभी महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। प्राचीन ज्योतिषों के अनुसार कलियुग का प्रारंभ 3102 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर नंद और चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। इस बात को भी वे विद्वान स्वीकार नहीं करते जो महाभारत का समय अब से 5000 वर्ष के लगभग पहले प्रतिपादित करते हैं। वस्तुतः तिथि क्रम का यह विषय इतना विवादग्रस्त है कि कभी इसका कोई ऐसा निर्णय क्रियात्मक प्रतीत नहीं होता जो सर्वसम्मत हो। पर महाभारत युद्ध एक ऐसी घटना है जिसके काल को केंद्र बिंदु बनाकर वैदिक साहित्य की रचना के समय को निर्धारित किया जा सकता है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य के महत्वपूर्ण अंग है और उनमें अनेक ऐसे जनपदों, राजवंशों और राजाओं का उल्लेख है जिनका वृतांत महाभारत और पुराणों में विद्यमान है। शतपथ ब्राह्मण में सत्रजित, शतानिक, दौष्यंती, भरत और धृतराष्ट्र आदि कितने ही राजाओं के नाम आए हैं और उन द्वारा संपादित यागिक अनुष्ठानों का विवरण है। परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने देवाप सौनक के पौरोहित्य में जो यज्ञ किया था उसका उल्लेख कर शतपथ में लिखा है कि जो कोई अश्वमेघ यज्ञ करता है वह सब पाप कृत्यों तथा ब्रह्म हत्याओं के पाप से मुक्त हो जाता है। भरत, धृतराष्ट्र और जन्मेजय आदि कुरु देश के राजा थे। इनमें से धृतराष्ट्र महाभारत युद्ध के समय में हुए थे और जन्मेजय उनके कुछ समय पश्चात। इस दशा में यह निर्विवाद रूप से माना जा सकता है कि शतपथ ब्राह्मण की रचना का काल महाभारत युद्ध के बाद का था। अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में भी इस प्रकार के इतिहास संबंधी प्रसंग विद्यमान हैं जिनके आधार पर उनका समय निर्धारित कर सकना संभव है, क्योंकि आरण्यक और उपनिषदें ब्राह्मण ग्रंथों से संबंध है। अतः उनका रचना काल ब्राह्मणों के समय से कुछ बाद ही रखना होगा। ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों और वेदांगों के विविध ग्रंथों में बहुत से ऋषियों के भी नाम आए हैं और इन ग्रंथों में ऐसे संकेत का विवरण भी विद्यमान है जिनसे कि इन ऋषियों की गुरु शिष्य परंपरा का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। कौन ऋषि किस राजा का समकालीन था यह जानने के लिए भी कतिपय तथ्य इन ग्रंथों में पाए जाते हैं। देवाप सौनक ने परीक्षित जन्मेजय का यज्ञ कराया था। शतपथ के इस कथन से यह स्पष्ट है कि सौनक जन्मेजय का समकालीन था। सौनक की शिष्य परंपरा में कौन कौन से ऋषि या आचार्य हुए और स्वयं सौनक किनके शिष्य थे यह हम वैदिक साहित्य के ग्रंथों से जान सकते हैं। यह जानने के साधन भी विद्यमान हैं कि विविध ब्राह्मण ग्रंथ या वेदांग साहित्य के विविध ग्रंथ किन ऋषियों व आचार्यों द्वारा बनाए गए। जब यह ज्ञात हो जाए कि प्रमुख ग्रंथ का रचयिता अमुक ऋषि था, वह ऋषि अमुक राजा का समकालीन था और वह राजा परीक्षित या जन्मेजय से इतनी पीढ़ी पहले या पीछे हुआ था, तो महाभारत को केंद्र बिंदु मानकर उस ग्रंथ को के रचना काल को निर्धारित कर सकने में विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वैदिक वाङ्मय के विविध ग्रंथों का समन्वय याज्ञवल्क्य, सौनक, अश्वलायन, पिपलाद, भारद्वाज, साकल आदि ऋषियों या आचार्यों के साथ है। यह जान लेने पर कि ये आचार्य किस राजा के समय में हुए यह प्रतिपादित कर सकना सर्वथा संभव हो जाता है कि इन द्वारा विरचित ग्रंथ महाभारत युद्ध से कितने समय पूर्व या पाश्चात बने थे, पर प्रधान समस्या महाभारत युद्ध के समय को निर्धारित करने की है। यह ऊपर लिखा जा चुका है कि भारत की प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार इस युद्ध का समय 3102 ईसवी पूर्व में था। आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों के ने इस युद्ध का समय 1000 से 1200 ईस्वी पूर्व तक निर्धारित किया है। इस प्रसंग में श्री काशी प्रसाद जायसवाल के मत का निर्देशन करना भी उपयोगी है। उन्होंने पौराणिक अनुश्रुति के आधार पर यह प्रदर्शित किया कि महाभारत युद्ध और महापद नंद के बीच 1050 वर्ष का अंतर था, क्योंकि नंद का काल 4वीं सदी ईस्वी पूर्व में था। अतः महाभारत युद्ध का समय ईस्वी सन से 1400 वर्ष के लगभग पहले होना चाहिए। हमारे लिए इस ग्रंथ में यह संभव नहीं है कि प्राचीन भारतीय तिथि क्रम की विविध समस्याओं को सुलझाकर किसी ऐसे मत का प्रतिपादन करें जो युक्ति युक्त हो। इस ग्रंथ का यह विषय भी नहीं है। वैदिक साहित्य के विविध ग्रंथों के रचना काल का निरूपण करते हुए यही पद्धति क्रियात्मक है कि कौन सा ग्रंथ महाभारत के काल से कितने समय पहले या पीछे बना, यह निर्दिष्ट कर दिया जाए। आधुनिक ऐतिहासिकों के मतों को दृष्टि में रखते हुए संभवतः यह भी समुचित होगा कि विषय को स्पष्ट करने के लिए महाभारत युद्ध के समय को 1400 ईस्वी पूर्व के लगभग मानकर वैदिक साहित्य के विविध ग्रंथों के रचना काल को अधिक सुस्पष्ट रूप से भी निर्दिष्ट कर दिया जाए। जो विद्वान महाभारत युद्ध का समय 3102 ईस्वी पूर्व में मानते हैं, वे इस ग्रंथ में निर्दिष्ट रचना काल में 1700 जोड़कर वैदिक साहित्य के अंतर्गत विविध ग्रंथों के काल का पौर्वापर्य अवगत कर सकते हैं। दूसरा, वैदिक संहिताओं का रचना काल। वेदों का अपुरुषत्व और अनादित्व डैश। जब हम वैदिक संहिताओं के रचना काल पर विचार करने लगें तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि आर्य जाति के विश्वास के अनुसार वेद मनुष्यकृत न होकर अपरुषेय और अनादि है। ईश्वर और प्रकृति के समान वे भी नित्य हैं, प्रलय होने पर भी उनका अंत नहीं हो जाता। षड् दर्शनों में सांख्य दर्शन सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, पर उसके मत में भी वेद स्वतः प्रमाण है। वेद की प्रमाणिकता के प्रतिपादन के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपने आप में ही प्रमाण है। उसे न मनुष्य ने बनाया है और न किसी मुक्त पुरुष ने। वह अनादि तथा अनंत है। योग दर्शन ईश्वर में विश्वास रखता है और ईश्वर के समान वेद को भी अनादि मानता है। मीमांसा दर्शन के शब्द को नित्य प्रतिपादित किया गया है, क्योंकि शब्द नित्य है अतः वेद रूपी शब्द राशि भी नित्य है। वे ईश्वर के निःश्वास रूप हैं। श्वास प्रवास की क्रिया सब प्राणियों में स्वाभाविक रूप से होती है। ईश्वर के निःश्वास रूप वेद ईश्वर के समान ही अनादि व नित्य है। वेदांत दर्शन को भी यही मत अभीष्ट है। उसके अनुसार भी वेद महान भूत ब्रह्म के निःश्वासित हैं। ब्रह्म वेद की योनि कारण अवश्य है, पर वेद उसकी कृति नहीं है। वेद तो ब्रह्म के ऐसे श्वास प्रवास के समान है जो स्वाभाविक रूप से निःसरित होते रहते हैं। इसीलिए सृष्टि तथा प्रलय दोनों अवस्थाओं में वे बने रहते हैं। न उनका कभी प्रारंभ होता है और न अंत। वैशेषिक दर्शन में वेदों को पुरुषय माना गया है, पर उसके अनुसार पुरुषय का अभिप्राय ईश्वर कृत है। वेद मनुष्य कृत न होकर परम पुरुष ईश्वर की कृति है। जगत का कर्ता परमेश्वर नित्य आप्त और सर्वज्ञ है, साथ ही वह करुणा का आगार भी है। इस कारण सृष्टि की उत्पत्ति कर वह मनुष्यों के कल्याण के लिए वेदों का भी उपदेश करता है। वेद उसी ज्ञान का नाम है या वेदों में वही ज्ञान विद्यमान है जिसका उपदेश मनुष्यों के हित कल्याण व मार्ग प्रदर्शन के लिए ईश्वर द्वारा किया जाता है। वैशेषिक के अनुसार वेद ईश्वर के वचन हैं, क्योंकि वे ईश्वर की कृति हैं, अतः वे प्रमाण रूप हैं। जो विचार वेद को अपरुषेय एवं अनादि मानते हैं या जो उन्हें ईश्वर की ऐसी कृति प्रतिपादित करते हैं महाप्रलय द्वारा भी, जिसका अंत नहीं होता, जो नित्य हैं, उनकी दृष्टि में वेदों के रचना काल के संबंध में विचार विमर्श करना ही निरर्थक है। जब उनकी रचना मनुष्यों द्वारा कभी की ही नहीं गई, तो उनके रचना काल के विषय में विचार करने का लाभ ही क्या है। वैदिक सूक्तों एवं मंत्रों के साथ जिन ऋषियों के नाम दिए गए हैं, वे उनके सत्ता व रचयिता न होकर दृष्टा मात्र थे। ऋषि शब्द की उत्पत्ति ही यह कही गई है, ऋषेर्ष ज्ञानार्थ तद्वा तवाद मंत्रम दृष्टवंतः। मंत्रों के दृष्टा होने के कारण ही वे ऋषि कहते हैं। प्राचीन विचारकों के अन्य मनमत्व पर भारत में ऐसे विचारक भी रहे हैं जो वेदों को न केवल ईश्वरीय ज्ञान या अपरुषेय नहीं मानते थे, अपितु उनकी निंदा भी करते थे। यास्क ने निरुक्त में आचार्य कौत्स के मत को उद्धृत किया है, जिसके अनुसार वेद मंत्र अनर्थक हैं, अनर्थक का ही मंत्रा, और वेद मंत्रों में ऐसी बातें कही गई है जो तर्क संगत नहीं है। इस कारण वेद मंत्र केवल अनर्थक, जिसका कोई अभिप्राय न हो ही नहीं है, अपितु अनुपनार्थ भी है। उनमें परस्पर विरोधी बातें भी पाई जाती है। एक स्थल पर कहा गया है कि रुद्र केवल एक ही है, और अन्यत्र यह कह दिया गया है कि रुद्र हजारों है, असंख्य हैं। प्राचीन भारत में ऐसे भी विचारक थे जिनके मत में वेद लोक यात्राविदों दुनियादारों के लिए आवरण अर्थात ढकोसला मात्र है। ऐसे ही विचारकों को नास्तिक कहते हैं। ईश्वर को न मानने वाले की संज्ञा नास्तिक नहीं है। नास्तिक उसे कहते हैं जो वेदों का निंदक है। लोकायत चार्वाक सदृश लोग तो वेदों के इतने निंदक व विरोधी थे कि तीनों वेदों के कर्ताओं को भांड, धूर्त और निशाचर तक कहने में भी संकोच नहीं करते थे। बौद्ध और जैन संप्रदायों के अनुयायी भी बौद्धों के प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करते थे। नास्तिक विचारकों के अतिरिक्त प्राचीन भारत में ऐसे व्यक्ति भी थे जो वेदार्थ को समझने के लिए इतिहास पुराण का ज्ञान आवश्यक मानते थे। उनका कहना था कि इतिहास और पुराणों की सहायता से वेद मंत्रों के अभिप्राय को स्पष्ट करे जो बहुश्रुत न होकर अल्पश्रुत होता है। वेद उससे डरता है कि कहीं वह अर्थ का अनर्थ न कर दे। वेद मंत्रों में अनेक राजाओं के नाम आए हैं। युद्ध सदृश कतिपय घटनाओं का भी उनमें उल्लेख मिलता है, पर इनका विस्तृत विवरण जो इतिहास रामायण महाभारत और पुराणों से ही जाना जा सकता है। वेद में जिन राजाओं के नाम आए हैं या जिन घटनाओं का संकेत है, उनके संबंध में इतिहास पुराण से विशद रूप में जानकारी प्राप्त करके ही उन वेद मंत्रों का अर्थ समझ सकना संभव है। ऋग वेद में संतनु, इच्छवाकु और राम के नाम आए हैं, पर इनके इतिहास का कोई परिचय वेद मंत्रों से नहीं मिलता। यदि ऋग वेद में आए हुए इन राजाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी हो, तो रामायण महाभारत और पुराणों से सहायता लेनी होगी, और तभी उन वेद मंत्रों के सही अभिप्राय को समझा जा सकेगा जिनमें कि ये नाम आते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत के विचारकों में भी ऐसे लोग थे जो वेदों का ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोग करने के पक्षपाती थे या वेदों में इतिहास की सत्ता को स्वीकार करते थे। यदि वेदों में ऐतिहासिक घटनाओं का संकेत हो या उनमें ऐसे राजाओं व जनपदों आदि के नाम आए हों जिनकी सत्ता इतिहास द्वारा प्रमाणित है, तो यह भी स्वीकार करना होगा कि वेदों की रचना उस समय में हुई जबकि ये ऐतिहासिक घटनाएं घटित हो चुकी थी। ऐतिहासिक संप्रदाय के अनुसार न वेद नित्य वनादि हो सकते हैं और न अपरुषय व ईश्वर कृत। वेदों के संबंध में जो विवेचन इस प्रकरण में किया गया है उसमें उन सब मंतव्यों का उल्लेख कर दिया गया है जो प्राचीन भारत में वेदों के विषय में प्रचलित थे। आधुनिक पाश्चात्य विद्वान वेदों के मनुष्यकृत मानते हैं और वैदिक ऋषियों की मंत्रों का कर्ता समझते हैं। उनके अनुसार वेदों की रचना किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी एक समय में न की जाकर बहुत से व्यक्तियों अर्थात ऋषियों द्वारा विविध समयों में की गई थी। ऋग्वेद अन्य तीन वेदों की तुलना में अधिक प्राचीन है और इस वेद के भी कतिपय मंडल व सूक्त ऐसे हैं अन्य मंडलों की तुलना में अधिक बाद के समय में जिनकी रचना हुई थी। इस मत के लिए वे जहाँ वेद मंत्रों में निर्दिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाते हैं वहाँ साथ ही भाषा शास्त्र की दृष्टि से भी इस मत का प्रतिपादन किया जाता है। वेद के संबंध में कौन सा मत सही है इसका निर्णय कर सकना हमारे लिए संभव नहीं है। वेद को अपरुषय अनादि तथा ईश्वरकृत मानने वाले विद्वानों का मत हमने इस प्रकरण में ऊपर लिख ही दिया है। अब हम ऐतिहासिकों के अनुसार वेदों के रचना काल के विषय में जो विभिन्न मत हैं उनका संक्षेप के साथ उल्लेख करेंगे ताकि विज्ञ पाठक किसी परिणाम पर पहुंच सके। वेदों के रचना काल के संबंध में पाश्चात्य विद्वानों के मत। 19वीं सदी के मध्य भाग में प्रोफेसर मैक्स मुलर ने यह विचार प्रकट किया था कि ऋग्वेद की रचना 1200 ईस्वी पूर्व के लगभग हुई थी। 6वीं सदी ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध ने यागिक कर्म कांड के विरुद्ध आवाज उठाई थी। उस समय तक यागिक विधि विधानों का भलीभांति विकास हो चुका था और यज्ञों का प्रतिपादन करने वाले ब्राह्मण ग्रंथों तथा सूत्रों की भी रचना हो चुकी थी। संपूर्ण वैदिक साहित्य उस समय विद्यमान था। इस वैदिक साहित्य के विविध भागों सूत्र ग्रंथों ब्राह्मणों और संहिताओं के निर्माण के लिए यदि 200 वर्षों का समय लगा हो तो ऋग्वेद की रचना 1200 ईसा पूर्व के लगभग ही होनी चाहिए। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने अपने मत की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं दिए थे। उन्होंने केवल एक कल्पना ही प्रस्तुत की थी पर बहुत से पाश्चात्य विद्वान चिरकाल तक उनके मत को स्वीकार समझते रहे। बाद में कोई 20 वर्ष पश्चात प्रोफेसर मैक्स मुलर ने स्वयं यह संभावना प्रकट की कि ऋग्वेद की रचना का काल 3000 ईस्वी पूर्व तक भी हो सकता है। प्रोफेसर मैक्स मुलर के बाद विल्सन कीथ कोलब्रुक और मैकडॉनल्ड आदि पाश्चात्य विद्वानों ने भी वेदों के रचना काल को प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने भी किसी वैज्ञानिक या युक्तियुक्त आधार पर अपने मत प्रकट नहीं किए अपितु प्रायः कल्पना व अनुमान का ही आश्रय लिया। 20वीं सदी के प्रारंभ तक पश्चिमी एशिया के प्राचीन इतिहास के संबंध में कतिपय ऐसे तथ्य ज्ञात हो चुके थे जिनमें इस क्षेत्र में वैदिक देवताओं की पूजा तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति की सत्ता के संकेत मिलते हैं। तुर्की के बोगज कोई नामक स्थान पर प्राप्त एक उत्कीर्ण लेख में इंद्र मित्रावरुणों और नासत्यों का उल्लेख है जो वैदिक देवता हैं। इस लेख को 1400 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। 18वीं से 12वीं सदी ईस्वी पूर्व तक बेबीलोनिया में जिस जाति का शासन था वह सूर्य और मरुत की उपासिका थी। इसी प्रकार के अनेक तथ्यों का पता लगने पर पाश्चात्य विद्वानों के लिए यह आवश्यक हो गया कि वे वैदिक संहिताओं के रचना काल को 1200 ईसा पूर्व से अधिक पुराना प्रतिपादित करें। विंटरनिट्ज ने वेदों के कतिपय भागों को 2500 ईस्वी पूर्व के लगभग तक पुराना माना और जैकोबी ने 4500 ईस्वी पूर्व के लगभग का। भारतीय विद्वानों के मंतव्य पर आधुनिक युग के भारतीय विद्वानों ने वेदों के निर्माण काल का जिस ढंग से निरूपण किया है वह अधिक महत्वपूर्ण तथा युक्ति संगत है। ज्योतिष तथा भूगर्भ शास्त्र आदि विद्वानों का सहारा लेकर इन विद्वानों ने वैदिक साहित्य के रचना काल को पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित समय से बहुत अधिक पुराना माना है। ज्योतिष की गणना के आधार पर श्री बालकृष्ण दीक्षित ने शतपथ ब्राह्मण का रचना काल 3000 ईस्वी पूर्व के लगभग में प्रतिपादित किया है। इसके लिए उन्होंने शतपथ ब्राह्मण की एक कंडिकाएं प्रस्तुत की है। एकम द्वे त्रीणि चत्वारीति बाय न्यायनी नक्षत्राण्य तथा एव भूयिष्ठा यत्कृता कास्त दभ्यु याने मेव तदुपैती तस्मात् कृति कास्वाद घित एता है ह वै प्राच्य दिशा न चवयन्ते सर्वाणि ह वा अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्य दिश दस्यो मेवास्येन दिश्याय हितो भवस्त अस्त तस्मात् कृति कास कृतिका स्वाद घित। इन कंडिकाओं में यह कहा गया है कि कृतिका नक्षत्र का उदय ठीक पूर्व दिशा से होता है। यह नक्षत्र पूर्व दिशा से विचलित नहीं होता, जबकि अन्य सब नक्षत्र पूर्व दिशा से हटकर उदय होते हैं, पूर्व दिशा में विचलित होते हैं। शतपथ के इस कथन से यह सूचित होता है कि इस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना उस समय में हुई थी जबकि कृतिका नक्षत्र का उदय ठीक पूर्व दिशा में हुआ करता था, पर वर्तमान समय में कृतिका नक्षत्र ठीक पूर्व दिशा में उदित नहीं होता, वह कुछ उत्तर की ओर हटकर उदय होता है। दीक्षित जी ने ज्योतिष की गणना द्वारा यह प्रदर्शित किया कि वह समय जबकि कृतिका का उदय ठीक पूर्व दिशा में हुआ करता था अब से 5000 वर्ष के लगभग पहले था। इसीलिए शतपथ ब्राह्मण की रचना के समय को 3000 ईस्वी पूर्व के लगभग मानना उचित होगा। ऋग्वेद का काल इससे भी पहले होगा, यह तो स्पष्ट ही है, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं के बाद बने थे। दीक्षित जी ने ज्योतिष के अन्य भी अनेक प्रमाण दिए हैं जिनसे वेदों की प्राचीनता सूचित होती है। वेदों के काल निर्णय के संबंध में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जिन युक्ति व प्रमाणों का सहारा लिया वे भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अनेक वैदिक सूक्तों के आधार पर यह प्रतिपादित किया कि ऋग्वेद के समय में सूर्य के मृग शिखा नक्षत्र में उदय होने पर उत्तरायण एवं नव वर्ष का प्रारंभ होता था। ज्योतिष की गणना के अनुसार ऐसा समय 4580 ईस्वी पूर्व में था। इस और तभी ऋग्वेद के बहुसंख्यक सूक्तों की रचना हुई थी। श्री अविनाश चंद्र दास ने वेदों के काल के निर्णय के लिए भूगर्भ शास्त्र का आश्रय लिया है। उनके अनुसार ऋग्वेद की रचना के समय में आर्य लोग सप्त सिंधु देश में निवास करते थे और इस देश के पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण में समुद्र था। सप्त सिंधु देश की अनयतम नदी सरस्वती उस समय पर्वत से निकलकर समुद्र में जा मिलती थी। वर्तमान समय में सरस्वती नदी में जल नहीं है और जिस मार्ग से वह पहले बहा करती थी वह राजस्थान के रेगिस्तान में लुप्त हो गया है। जहां आज राजस्थान के मरुस्थल हैं वही है, किसी प्राचीन समय में वहां समुद्र था और सरस्वती नदी उसी में गिरा करती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का तो उल्लेख है, पर उनके पूर्व की नदियों तथा उत्तरी भारत के मगध अंग बंग आदि प्राच्य जनपदों का इस वेद में उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद के एक मंत्र से पूर्व और अपर अर्थात पश्चिमी समुद्रों की सत्ता सूचित होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेद के समय में आर्य लोग जिस सप्त सिंधु देश में निवास करते थे उत्तर दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम में वह समुद्रों से घिरा हुआ था। पूर्वी समुद्र से बंगाल की खाड़ी अभिप्रेत नहीं हो सकती, क्योंकि ऋग्वेद में न पूर्वी जनपदों का उल्लेख है और न गंडक, सरयू आदि पूर्वी नदियों का। इसी प्रकार दक्षिण भारत की भी किसी नदी, पर्वत या जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। यह संभव भी नहीं था, क्योंकि उस समय यह क्षेत्र समुद्र से आवृत था। ऋग्वेद द्वारा सप्त सिंधु देश के विषय में जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, वे भूगर्भ शास्त्र द्वारा भी प्रमाणित हैं। इस विज्ञान द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी प्राचीन काल में भारत की भौगोलिक दशा वर्तमान से बहुत भिन्न थी। उस समय राजस्थान और पूर्वी भारत के प्रदेशों के स्थानों पर समुद्र था और एक अन्य समुद्र पामीर की पर्वतमाला के उत्तर में, अर्थात आधुनिक तुर्किस्तान और मंगोलिया के क्षेत्र में भी विद्यमान था। ऋग्वेद की रचना इन्हीं भौगोलिक दशाओं के समय में हुई थी। भूगर्भ शास्त्र के अनुसार ये भौगोलिक दशाएं 25,000 वर्ष ईस्वी पूर्व में वह उससे पहले थी। अतः ऋग्वेद को बने कम से कम 27,000 वर्ष हो चुके हैं, यह मानना युक्तिसंगत होगा। कतिपय अन्य विद्वानों ने भी वैदिक संहिताओं के रचना काल को निर्धारित करने का प्रयत्न किया है, पर यह विषय इतना विवादग्रस्त है कि अभी किसी भी मत को पूर्णतया स्वीकार्य समझ सकना कठिन है। अभी इस क्षेत्र में शोध की बहुत गुंजाइश है। जिन भारतीय विद्वानों के मतों का हमने इस प्रकरण में ऊपर उल्लेख किया है, वे भी चार वेदों को एक ही समय में बना हुआ नहीं मानते। लोकमान्य तिलक के अनुसार ऋग्वेद के बहुसंख्यक मंत्रों की रचना 4000 से 2500 वर्ष ईस्वी पूर्व के समय में हुई थी और अथर्ववेद, तैत्रीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण तथा ऋग्वेद के कतिपय भागों का रचना काल 2500 से 1400 ईस्वी पूर्व तक था। कल्प, वेदांग तथा कतिपय आरण्यकों और उपनिषदों की रचना इसके बाद में हुई, पर 6 सदी ईस्वी पूर्व से पहले की संपूर्ण वैदिक साहित्य अपने वर्तमान रूप को प्राप्त कर चुका था। चारों वेदों को जो एक ही समय में विरचित नहीं माना जाता और ऋग्वेद के कतिपय भागों को जो मुख्य भाग की अपेक्षा बाद में बना हुआ समझा जाता है, इसके दो कारण हैं। पहला, भाषा का भेद - समय के साथ साथ भाषा विकसित होती जाती है और उसके व्याकरण के में अंतर आने लगता है। वेदों की भाषा में भी ऐसे भेद पाए जाते हैं जिनका विकास समय बीतने के साथ साथ हुआ था। दूसरा, वेदों के कतिपय सूक्तों में ऐसे स्थानों, जनपदों, नदियों और पर्वतों के नाम आए हैं जिनसे आर्यों के बाद में परिचय हुआ था। इसी प्रकार उनमें कतिपय ऐसे राजाओं के नाम भी विद्यमान हैं जिनका काल महाभारत युद्ध के समय में व उसके भी बाद में था। इसी कारण इन्हें बाद की रचना समझा जाता है। यह माना जाता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल की रचना अन्य मंडलों की अपेक्षा बाद के समय में हुई थी। इस मंडल में प्रयुक्त हुई भाषा में व्याकरण संबंधी कतिपय ऐसे प्रयोग हैं जिसका विकास बाद में हुआ था। उदाहरणार्थ, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में अकारांत शब्दों की प्रथमा विभक्ति में द्वितीय वचन द्विवचन का प्रत्यय आ है, जो द्वा, सुपर्णा, सयुजा, सखाया में सुपर्णा आदि में प्रयुक्त हुआ है, पर 10वें मंडल में द्विवचन के लिए प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है, यथा सूर्या, चंद्रमसो, घाता में। लौकिक संस्कृत में भी अकारांत शब्दों के द्विवचन में अप्रत्यय ही लगता है। लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत की तुलना में अर्वाचीन है, अतः यह मानना होगा कि 10वें मंडल में व्याकरण संबंधी जो ऐसे प्रयोग आए हैं जो पुरानी वैदिक संस्कृत से भिन्न और लौकिक संस्कृत के अनुरूप है, उसका कारण यही हो सकता है कि इस मंडल की रचना बाद में हुई थी। भाषा के अतिरिक्त विषय की भिन्नता व नवीनता के आधार पर भी ऋग्वेद के 10वें मंडल को बाद की रचना माना जाता है। उसमें कतिपय ऐसे देवताओं की सत्ता भी पाई जाती है जो मानसिक भावनाओं के प्रतीक हैं, यथा श्रद्धा और मन्यु। इनकी स्तुति में या इनको लक्ष्य बनाकर अनेक सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में विद्यमान हैं। ऋग्वेद में अन्यत्र मानसिक भावनाओं के प्रतीक देवताओं की सत्ता नहीं है। 10वें मंडल में अनेक ऐसे सूक्त भी हैं जिनमें दार्शनिक चिंतन का उत्कृष्ट व विकसित रूप दिखाई देता है। सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व सर्वत्र अंधकार ही अंधकार था और प्रकृति अपने मूल अव्यक्त रूप में थी। किस प्रकार उसने व्यक्त रूप प्राप्त किया और उसे इस रूप में लाने वाला कौन था, इसका अत्यंत गंभीर रूप से प्रतिपादन 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में किया गया है। दार्शनिक चिंतन का यह विकसित रूप इसी मंडल में पाया जाता है, जिसे दृष्टि में रखकर अनेक विद्वान इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि इसकी रचना बाद के समय में हुई थी। ऋग्वेद की तुलना में अथर्व वेद को भी बाद का बना हुआ माना जाता है। इसका कारण जहाँ उसकी भाषा का विकसित रूप में होना है वहाँ साथ ही उसमें ऐसे भौगोलिक स्थानों के उल्लेख का होना भी है जहाँ आर्यों का प्रवेश बाद के समय में हुआ था। ऐसे स्थानों या प्रदेशों में अंग और मगध के नाम उल्लेखनीय हैं। ऋग्वेद के समय में आर्यों के जनपद सप्त सिंधु देश तक ही सीमित थे। बाद में पूर्वी और दक्षिणी भारत में भी आर्यों का प्रसार हुआ। अथर्व वेद में अंग और मगध का उल्लेख होने के कारण यह परिणाम निकाला जा सकता है कि इस वेद की रचना उस समय में हुई जबकि आर्य लोग पूर्वी भारत में बसना प्रारंभ कर चुके थे। आधुनिक विद्वानों के मत में चारों वेद एक ही समय में नहीं बने थे। विविध ऋषियों द्वारा समय समय पर जिन मंत्रों व सूक्तों की रचना होती रही उन्हें बाद में महर्षि वेद व्यास ने संहिताओं के रूप में संकलित कर दिया, पर यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि वेद व्यास के समय तक वैदिक मंत्रों की रचना पूर्ण हो चुकी थी और उनके बाद किसी छंदोबद्ध सूक्ति की वैदिक ऋचा या मंत्र की स्थिति प्राप्त नहीं हुई। प्राचीन भारतीय अनुश्रुति के अनुसार वेद व्यास महाभारत के समय में हुए थे और संभवतः परीक्षित जन्मेजय के समय तक जीवित रहे थे। इस दशा में वेदों की रचना महाभारत के समय तक पूरी हो चुकी थी यह स्वीकार करना होगा। महाभारत का समय कौन सा माना जाए, इस संबंध में विविध मतों का संकेत इसी अध्याय में ऊपर किया जा चुका है। उसका समय 3102 ईसा पूर्व था या 1406 ईसा पूर्व में, यही दो मत वर्तमान में मुख्य हैं। अतः वेदों के रचना काल को 1400 ईसा पूर्व के बाद का मानने का तो प्रश्न ही नहीं है, पर उनकी रचना इस काल से भी बहुत पहले प्रारंभ हो चुकी थी। इस विषय में भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। इस प्रसंग में यह निर्देश कर देना भी आवश्यक है कि नृतत्व शास्त्र और इतिहास के क्षेत्र में जो नई खोज पिछले वर्षों में हुई है उन द्वारा मानव सभ्यता के आदि युग का समय बहुत प्राचीन प्रमाणित तो होता जा रहा है। साथ ही वैदिक युग को भी अधिक प्राचीन प्रतिपादित करने की प्रवृत्ति अब बढ़ रही है। तीसरा, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों का रचना काल। ब्राह्मण ग्रंथों का एक प्रतिपाद्य विषय यह भी है कि यागिक कर्मकांड में वेद मंत्रों का विनियोग किस प्रकार किया जाए, अतः स्वाभाविक रूप से उनका रचना काल वैदिक संहिताओं के बाद में होना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत पुराना है, उसका पाठ भी उसी ढंग से स्वरयुक्त है जैसे कि वैदिक संहिताओं का है। इसी अध्याय में हमने शतपथ की दो कंडिकाएं उद्धृत की हैं जिनमें कि कृतिका नक्षत्र ठीक पूर्व दिशा में उदित होता है यह कहा गया है और इस कथन के आधार पर श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने किस प्रकार इस ब्राह्मण ग्रंथ का रचना काल से अब 5000 वर्ष के लगभग पूर्व प्रतिपादित किया है यह हम लिख चुके हैं। प्राचीन भारतीय अनुश्रुति के अनुसार महाभारत का भी यही काल था। इस समय तक वैदिक संहिताएं का निर्माण हो चुका था और उनकी व्याख्या के रूप में ब्राह्मण ग्रंथों का प्रणयन भी आरंभ हो गया था। आर्य जाति का प्रसार भारत के पूर्वी प्रदेशों में किस प्रकार हुआ, इस संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आख्यान शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। उसके अनुसार माथव विदेध और उसके पुरोहित गौतम राहुगण जब सरस्वती नदी के तट पर थे तो वैश्वानर अग्नि ने पूर्व दिशा की ओर प्रस्थान करना प्रारंभ किया। माधव विदेध और गौतम राहुगण इस अग्नि के पीछे पीछे चलते हैं। मार्ग में जो भी नदियां पड़ी सबको अग्नि जलाती गई, पर उत्तरगिरी से निकलकर बहने वाली सदा नीरा नदी को अग्नि नहीं जला सकी। इस कारण पूर्व दिशा की ओर उसका अग्रसर होना रुक गया। यही कारण है जो पुराने समयों में सदा नीरा से पूर्व की ओर का प्रदेश ब्राह्मणों के निवास के अयोग्य था, क्योंकि वैश्वानर अग्नि ने उसका आस्वादन नहीं किया था। उस समय ब्राह्मणों का निवास पूर्व में कौशल विदेह तक ही सीमित था। शतपथ ब्राह्मण का यह आख्यान एक ऐतिहासिक तथ्य को सूचित करता है। वैदिक युग में आर्यों का प्रधान केंद्र सरस्वती नदी के क्षेत्र में था। बाद में उन्होंने पूर्व दिशा में जाकर बसना प्रारंभ किया और वहां के प्रदेशों को अग्नि से पवित्र कर निवास के योग बनाया। सदा नीरा गंडक नदी का प्राचीन नाम था। उसके पूर्व के प्रदेशों में बाद के काल में भी आर्य भिन्न जातियों का बड़ी संख्या में निवास रहा, पर शतपथ के समय तक आर्य लोग सदा नीरा गंडक के पार्श्ववर्ती प्रदेश में बस चुके थे और विदेह नाम से उनका राज्य भी वहां स्थापित हो गया था। शतपथ में कुरुदेश, पांचाल, कौशल, मत्स्य, काशी और सत्वत जनपदों का उल्लेख है और अनेक राजाओं का भी, जिनमें दौसयंती, भरत, धृतराष्ट्र और परीक्षित जनमेजय इस ब्राह्मण के काल निर्णय की दृष्टि से विशेष महत्व के हैं। धृतराष्ट्र और जनमेजय के उल्लेख से यह परिणाम निकाला जा सकता है कि शतपथ की रचना महाभारत युद्ध के कुछ समय पश्चात हुई थी। यदि महाभारत का समय 3102 ईसा पूर्व में माना जाए तो यही तो वही समय था जबकि कृतिका नक्षत्र ठीक पूर्व दिशा में उदित होता था। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय की जब रचना हुई तब आर्यों का प्रधान केंद्र मध्यमादिशी में था। इसी को बाद के समय में मध्य देश कहा जाने लगा। कुरु और पंचाल इसी मध्यमादिशी में ध्रुव रूप से प्रतिष्ठित राज्य थे, पर ऐत्रेय के समय में मगध सदृश प्राच्य प्रदेशों में भी आर्यों के राज स्थापित हो चुके थे और वहां के राजा साम्राज्य विस्तार के लिए प्रयत्न करने के कारण सम्राट के रूप में अभिषिक्त हुआ करते थे। दक्षिण दिशा में तब शतपथों का राज्य था और प्रतीची अर्थात पश्चिम दिशा में जनपदों के स्वराज्य प्रकार के शासनों की सत्ता थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में जिन भौगोलिक स्थानों का उल्लेख है वे यह सूचित करने के लिए पर्याप्त हैं कि इस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना के समय तक आर्य लोग भारत के अनेक सुदूरवर्ती प्रदेशों में बस चुके थे, इसीलिए इसे शतपथ की अपेक्षा कुछ समय पश्चात का बना हुआ माना जाता है। ऋग्वेद के अन्य ब्राह्मण ग्रंथ सांख्यायन ब्राह्मण के रचना काल के संबंध में एक बात उल्लेखनीय है। इस ब्राह्मण में लिखा है कि वाणी के प्रशिक्षण के लिए उत्तर दिशा में जाते हैं और वहां से जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके आता है उनका सत्कार किया जाता है। इस कथन से सूचित होता है कि भारत का उत्तर पश्चिमी भाग या उत्तरी प्रदेश वाक शास्त्र या व्याकरण के प्रशिक्षण के लिए बहुत प्रसिद्ध था। अन्य प्रदेश के लोग वहां इसके अध्ययन के लिए जाया करते थे। प्राग बौद्ध काल में तक्षशिला नगरी शिक्षा केंद्र के रूप में बहुत विख्यात थी और पाणिनि मुनि भी उत्तर पश्चिमी भारत के ही निवासी थे। कुरु पांचाल और सरस्वती नदी के क्षेत्र की तुलना में इस प्रदेश की शिक्षा केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त पर्याप्त बाद के समय में हुई थी। इससे यह अनुमान किया जाता है कि सांख्यायन ब्राह्मण की रचना शतपथ और ऐत्रेय की तुलना में पीछे के काल में हुई थी।